31 जुलाई जलंधर राम और रावण और कंस और कृष्ण की राशि एक ही थी जनाचार्य श्री ज्ञानचंद्र जी महाराज साहब। 30 जुलाई को जैन स्थानिक गुड़मंडी में रविवारीय प्रवचन के दौरान खचाखच भरे जनसमूह के बीच जनाचार्य श्री ज्ञानचंद्र जी मसा ने फरमाया कि राम और रावण की राशि एक ही थी। राम ने रावण को नाश कर दिया। कंस और कृष्ण की राशि एक ही थी, कृष्ण ने कंस को मार गिराया। फिर राशि क्या काम आई? इसी प्रकार हर दिन किसी न किसी दिशा में दिशाशूल होता है, तो क्या उस दिशा में जाने वाली ट्रेनें, बसें और कारों का एक्सीडेंट हो जाएगा? नहीं तो फिर दिशाशूल क्या काम आया? सूर्य भी एक ग्रह है, उसका काम है प्रकाश देना, वो सबको मिलता है, तो फिर अन्य ग्रहों का दुष्प्रभाव हो या प्रभाव सबको मिलेगा, किसी एक को नहीं। एक ही समय में अनेकों बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन उन बच्चों का व्यवहार एक दूसरे से विपरीत नजर आता है। ऐसा क्यों? एक ही साथ गर्भ में रहने वाले बच्चों में एक काला दूसरा गोरा, एक बुद्धिमान दूसरा मूर्ख, एक धनवान दूसरा निर्धन, ऐसा क्यों होता है? वहाँ ज्योतिष नहीं, आदमी के अपने कर्म काम आते हैं। अतः ज्योतिष के चक्कर में न पड़कर अपने कर्मों को सुधारने की जरूरत है। इसी तरह छींक को भी शकुन अपशकुन देखा जाता है। जैसा कि कहा जाता है, छींक पीठ की कुशल उच्चारे, बाई छींक कारज सब सब सारी, सन्मुख छींक लड़ाई भाखम, छींक दाहिनी द्रव्य विनाशे, ऊपरी छींक महाजयकारी, नीची छींक महाभयकारी, अपनी छींक महादुखराई, इसी छींक विचारों भाई, एक काम दो छींक, काम बने सब ठीक। छींक का कभी कभी प्रभाव देखा जाता है, लेकिन गारंटी से नहीं कह सकते। भूत प्रेत की घटनाएं आए दिन सुनने को मिलती है, लेकिन हकीकत में भूत प्रेत की घटनाएं लाखों में एक घटती है, और वो घटना ऐसी होती है जो मानव के सामर्थ्य की नहीं। अगर आपको किसी में भूत या देवता प्रवेश किया नजर आए, तो उसके पूछो कि मेरी जेब में कितने रुपए हैं, उसमें 100 के कितने और 500 के कितने हैं, उनके नंबर क्या है। अगर वो व्यक्ति सब सही सही बता दे, तो समझो उसके तन में कोई देवता है, और न बता पाए तो समझो कोई देवता आदि कुछ नहीं, खाली बकवास है। शकुन अपशकुन के लिए धात ज्योतिष का प्रसंग आपके सामने है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में घाघ नामक एक ज्योतिषी हुए थे। बचपन से ही उसे पशु पक्षियों के लक्षण व कर्तव्य में रुचि थी, तथा ज्ञान होने से अनेक तरह की भविष्यवाणियां करके लोगों को चमत्कृत कर देते। पढ़े लिखे कम थे, पर अपने अनुभव ज्ञान के बल पर एवं शकुन लक्षण देखकर पशु पक्षियों की चाल ढाल व करतब तथा आकाश की वे रंगत देखकर भविष्यवाणियां किया करते थे, और प्रायः सत्य निकलती थी। कहते भी हैं कि गांव के सिद्ध विद्वान की अपने गांव में कदर नहीं होती। इसी बात से परेशान होकर घाघ धारा नगरी के राजा भोज की सभा में चले गए और वहाँ राज ज्योतिषी बन गए। एक बार धारा नगरी के आसपास कहीं भी वर्षा नहीं हुई, अकाल के लक्षण दिखने लगे। चिंतित होकर राजा ने ज्योतिषियों से पूछा, इस साल वर्षा का योग है या नहीं? गणित फलित करके सभी ज्योतिषियों ने एकमत से कहा, महाराज इस साल क्या 3 वर्ष तक वर्षा का योग नहीं बन रहा है, भयंकर अकाल पड़ेगा। राजा भोज ने घाघ की ओर देखा, वो अब तक चुप ही बैठे थे। अब क्या कहते हैं? घाघ ने भी अपनी गणित फैलाई, कुछ आकाशीय लक्षण देखे तो लगा वर्षा का योग तो है, परंतु राज्य के सब पंडितों को एकमत देखकर सोचा, जब सब पंडित अकाल की घोषणा कर रहे हैं तो मुझे भी दोबारा सोचकर ही कुछ पक्की बात करनी चाहिए। उसने राजा से कहा, महाराज मैं 2 दिन बाद ही उत्तर दूंगा। घाघ जंगल की तरफ निकल गया, वहाँ एक गधा देखा जिसके कान बहुत नीचे लटक रहे थे। घाघ ने सोचा यह लक्षण वर्षा का है। फिर वो आगे चला तो देखा चींटियों का दल मुंह में अन्न कण दबाए बिलों की तरफ भाग रहे हैं, चिड़ियां धूल में स्नान कर रही है, चीलों का समूह गोल गोल घूमकर आकाश में उड़ता ही जा रहा है, यह सब लक्षण देखकर घाघ को अपने गणित पर विश्वास हो गया कि वर्षा अवश्य होगी। वो जंगल में कुछ और आगे बढ़े तो एक बड़ा नाला जो सूखा था दिखाई दिया। नाले के इस पार एक मेहतर की लड़की अपने पशुओं को चारा चरा रही थी और दूसरी पार उसका पिता अपने सुअरों को चरा रहा था। लड़की ने जोरों से पुकारा, बाबा बाबा जल्दी लौट कर आ जा, आज रात बहुत जोर से पानी आने वाला है, उसके बाद सुअर नाला पार नहीं कर पाएंगे। बाबा ने पूछा, बेटी तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? लड़की ने उत्तर दिया, बाबा नाले में एक टिटरी ने अंडे दे रखे हैं और घबराई हुई बहुत जोरों से आवाज करती हुई अपने अंडों को उठाकर दूसरे सुरक्षित स्थान में रख रही है। इसका मतलब साफ है कि उसे इस बात का भान हो गया है कि वर्षा आने वाली है। लड़की का नाम भरदरी था। भरदरी का पिता बेटी के कहे अनुसार आ गया। ज्योतिषी घाघ संशय रहित होकर अपनी नगरी की ओर चले आए। नगर में आते ही उन्होंने तुरंत सारे ज्योतिषियों की सभा बुलाई, राजा को भी बुलाया और कहा, आप सब सुन ले, आठ पहर के भीतर ही वर्षा होगी और होगी भी मूसलाधार। राजा ने कहा, न बादल न बिजली, आठ पहर के भीतर वर्षा कहाँ से आ जाएगी? घाघ ने कहा, राजन जरूर आएगी, आप मेरी बात पर विश्वास करें। फिर सब अपने अपने घर चले गए। घाघ अपने घर गए, खाना खाकर अपने शयन कक्ष में गए और आकाश की ओर देखकर बोले, मेघराज आज तू बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की कड़कड़ाहट के साथ खूब जोरों से बरस कर इस तृषित धरती की प्यास बुझा दे। यह कहकर लेट गए, किंतु उनकी आंखें आकाश की ओर ही लगी रही। रात का पहला पहर बीतते बीतते उन्हें बादल की एक छोटी सी बदली दिखाई पड़ी। थोड़ी ही देर में बादल कुछ गहराने लगे तो घाघ ने हर्षित मन से कहा, झर बादल तू झर झर। घाघ का इतना कहना था कि झिरमिर झिरमिर वर्षा शुरू हो गई। झबक झबक बिजली चमकने लगी, आकाश पूरा मेघाच्छन्न हो गया। आधी रात बीतते बीतते जल थल एकाकार हो गए, धरती तृप्त हो गई। प्रातः काल हुआ तो लोग हर्ष से नाचते हुए और घाघ ज्योतिष की जय जयकार के नारे लगाते हुए उनके मकान के नीचे बड़ी संख्या में जमा हो गए। राजा भोज ने घाघ के सम्मान में एक सभा का आयोजन किया और उन्हें सर्वोच्च उपाधि से विभूषित किया। अब तो जो ज्योतिषी घाघ के प्रति ईर्ष्या और द्वेष रखते थे वे भी उनकी विद्वता का लोहा मान गए और उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। घाघ के मन में यह कल्पना उठी कि भाडरी के साथ अपना विवाह हो जाए तो वर्षा के शकुन आदि देखने में अपने को अच्छी मदद मिलेगी। यह सोच कर के उसके पिता के पास गए, अपने मन की बात कही और याचना की कि वो अपनी कन्या उन्हें पत्नी के रूप में दे दें। भाडरी के पिता ने एक बार तो इनकार किया, लेकिन फिर घाघ की विद्वता और राज सम्मान देख कर राजी हो गया। भाडरी ने भी अपनी सहमति दे दी, लेकिन पंचायत से अनुमति लेना आवश्यक था। तब अपनी जाति के लोगों की एक सभा बुलाई। पंचों ने सारी बात सुनकर घाघ से कहा, इस विवाह के कारण ब्राह्मण समाज बहिष्कृत करे या राजा उन्हें दरबार से निकाल दे, अथवा और कोई भी संकट तुम्हारे ऊपर आए तो सब सहर्ष सहन करोगे, पर भंडरी का परित्याग कदापि नहीं करोगे तो हम विवाह की इजाजत दे सकते हैं। घाघ ने उन्हें समझाते हुए कहा, आप लोग चाहते हैं तो मैं क्षिप्रा नदी की साक्षी से आपके कहे वचन स्वीकार करता हूँ। हवन तथा वेद मंत्रों के बीच घाघ भरदरी परिण्य सूत्र में बंध गए। कहा जाता है कि आज डाकोट जाति के जो लोग हैं, वे घाघ भरदरी की संतान है। ज्योतिष का समय कितना बारीक है जिसे पकड़कर सही गणना करने वाले ज्योतिष कहाँ रह गए हैं। ज्योतिष का प्रसंग भी सुनने लायक है। राजस्थान में जोधपुर नाम का शहर है। उस समय शहर में चंदू नाम के बहुत बड़े ज्योतिषज्ञ हुए हैं। घटना उनके जन्म समय की है। जब चंदू के जन्म का समय सन्निकट आया तो उनके पिता पंडित ने दाई से कहा, बच्चे का जन्म होते ही तुम नींबू बाहर फेंक देना। बच्चे का जन्म होते ही दाई ने नींबू बाहर फेंक दिया, मगर वो किसी जगह देहली से टकराकर फिर वहीं उचट गया। दासी ने उस नींबू को पुनः उठाकर बाहर फेंका। नींबू के गिरते ही पंडित ने, जो ज्योतिष शास्त्र का प्रचंड विद्वान था, समय देखकर कुंडली बनाई। कुंडली बनाकर वो प्रतिदिन उस पर मनन करते। मनन करते करते 8-10 दिन में वो इस नतीजे पर पहुँचे कि अगर पिता अपने पुत्र का मुख देखेगा तो उसे गधे पर चढ़ने का हुक्म मिलेगा। ज्योतिषी ने विचार किया, गधे पर उसी को बिठलाया जाता है जो कोई बड़ा अपराध करता है। गलत काम किए बिना किसी को दंड नहीं मिलता। अगर मुझे दंड भोगना पड़ा तो मेरी और पुरखों की इज्जत धूल में मिल जाएगी। इस प्रकार पशुपेश में पढ़कर आखिर उसने यही तय किया कि चुपचाप घर से निकल जाना ही अच्छा है। न तो बेटे का मुंह देखूंगा और न गधे पर बैठने का दंड ही भोगना पड़ेगा। ज्योतिषी ने कुंडली की दूसरी प्रतिलिपि की एक नकल घर पर रख दी और एक अपने पास रख ली। फिर घर वालों को बिना बताए चुपचाप गांव छोड़कर कहीं बाहर चला गया। ज्योतिषी निरुद्देश्य सा घूमता घूमता एक नगर में जा पहुंचा। अपनी विद्वता के प्रभाव से राजा के दरबार तक उसकी पहुंच हो गई। राजा के आश्रित कई ज्योतिषी थे और उनका एक मंडल बना हुआ था। इस नए ज्योतिषी का नाम भी उस मंडल में जुड़ गया। धीरे धीरे उस ज्योतिष की विद्वता चारों ओर फैलने लगी। कई बार तो ऐसे प्रसंग भी आते कि किसी ज्योतिष ने कहा ऐसा होगा, पर इस नए ज्योतिष ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, इस प्रकार का होगा। अंततः उसकी बात सत्य सिद्ध होती। इससे नए ज्योतिष का प्रभाव और बढ़ता ही गया। शनैः शनैः राजा का भी इस ज्योतिषी पर विश्वास जम गया। अब तो वो प्रधान राज ज्योतिषी के पद पर आसीन हो गया। राजा उसका बड़ा ही सत्कार सम्मान करता। इधर लड़का भी धीरे धीरे बड़ा होता गया। 7-8 वर्ष का होने पर विद्याध्ययन करने लगा। 16-17 वर्ष का हुआ तो ज्योतिष में अष्टांग निमित्त विद्याओं में पारंगत हो गया। लड़के को भी अपने पिता की बहुत याद आती रहती थी। सहसा एक दिन लड़के ने अपनी माता से पूछा, माताजी, मेरे पिताजी कौन है, वो कहाँ रहते हैं? माता ने रोते हुए उदास मन से कहा, लाल, जब तेरा जन्म हुआ तभी वह न जाने कहाँ चले गए हैं। किसी से कुछ कहा सुना भी नहीं, किसी को बताया भी नहीं। कहाँ गए, क्यों गए, कोई कुछ नहीं जानता। तब से अब तक उनका कुछ भी पता नहीं चला है। लड़के ने मन में सोचा, शायद मेरे जन्म के बाद का कोई रहस्य होना चाहिए। अभी पिता ने घर छोड़ा है। उसने माँ से पूछा, माँ, क्या मेरी कुंडली है? माता, मुझे तो मालूम नहीं, परंतु होनी अवश्य चाहिए। जिन्होंने दुनिया के लड़कों की कुंडलियाँ बनाई, वे क्या अपने लड़के की कुंडली नहीं बनाएंगे? इतना कहकर माता ने एक अलमारी की ओर इशारा करते हुए कहा, इसमें तुम्हारे पिताजी के हाथ के बहुत से कागजात रखे हैं, इनमें देखो, शायद कुंडली तुम्हारी मिल जाए। लड़के ने कुंडली खोजी और वो मिल भी गई। अब उसने कुंडली पर मनन करना आरंभ किया। मनन करने पर उसे पता चला कि संभवतः पिताजी इस कुंडली के कारण ही घर त्याग कर चले गए हैं। घर रहते तो मेरा मुंह देखना ही पड़ता और मुंह देखने पर गधे की सवारी का योग है। लड़के ने माँ से पूछा, मेरे जन्म के समय पिताजी ने और भी कुछ कहा था? माता, हाँ, दाई को कह रखा था कि बच्चे के जन्मते ही ऊपर से नींबू फेंक देना। लड़का, माँ, मैं एक बार उस दाई से मिलना चाहता हूँ, उसे बुलवाओ तो सही। दाई बुलाई गई। लड़के ने उससे पूछा, क्या तुमने ठीक मेरे जन्म के समय ही नींबू फेंक दिया था? दाई ने कहा, हाँ, फेंक तो दिया था जन्मते ही, परंतु वह नींबू एक बार ही देहली से टकरा कर वापस आ गया था। तब मैंने उसे उठाकर दूसरी बार फेंका था। अब लड़का समझ गया कि इतने स्वल्प काल के भेद से ही कुंडली में फर्क पड़ गया। जो काल भेद मोटे तौर पर नगण्य सा प्रतीत होता है, वही कभी कभी कुंडली में बहुत अधिक भेद उत्पन्न कर देता है। इस कुंडली के विषय में ऐसा ही हुआ है। सूक्ष्म समय के कारण अर्थ का अनर्थ हो गया है। लड़के ने उतना समय कम करके दूसरी कुंडली तैयार की। फिर उसका फलादेश निकला, तब पता चला कि यदि इस कुंडली वाले का मुख उसका पिता देख ले तो उसे हाथी की सवारी मिलेगी। इस फलादेश से लड़के को अपार खुशी हुई। इस निष्कर्ष के निकलते ही उसने अपनी माता से कहा, माँ मैं घर में खाने पीने आदि की व्यवस्था कर देता हूँ, फिर पिताजी की खोज में जाऊंगा। मैं पिताजी को खोज कर ही दम लूंगा और उन्हें वापस घर लाऊंगा। गृह व्यवस्था करके लड़का घर से चल पड़ा। इधर उधर भ्रमण करते करते वो भी उसी नगर में पहुंचा जहां उसका पिता राज ज्योतिषी था। उस नगर में एक स्थान पर ठहर गया। उन्हीं दिनों में एक बार राज ज्योतिषी ने कहा, अमुक समय पर इतनी अधिक वर्षा होगी कि आपका कुंड भर जाएगा और मच्छर कुंड में पड़ेगा। इस भविष्यवाणी की बात सारे शहर में प्रसिद्ध हो गई। इस लड़के ने भी भविष्यवाणी सुनी और उस पर विचार किया। तब राजसभा में जाकर राजा से कहा, राजन मच्छा पड़ेगा तो सही, मगर आधा कुंड में आधा कुंड के बाहर लटकता हुआ होगा। राजा ने कहा, इस समय हमारे राज ज्योतिषी यहाँ सभा में मौजूद नहीं है, तथापि तुम अपनी बात लिख कर दे दो। लड़के ने लिख कर दे दिया। कथित समय पर जब वर्षा का समय आया तो राजा बहुत से लोगों को लेकर उस कुंड पर आया। नियत समय पर वर्षा हुई और इतनी जोरदार कि एक मच्छर भी गिरा और वो आधा कुंड में तथा आधा बाहर रह गया। सबके आश्चर्य का पार न रहा। आखिर ज्योतिषियों ने जो कहा था सच साबित हुआ। खास तौर पर नए युवक ज्योतिषी की बात बिल्कुल सच निकली। राजा ने उसका अभिनंदन किया। राजा ने दोनों ज्योतिषियों को कई हजार का पारितोषिक दिया और इतना सम्मान किया कि हाथी के हौदे पर बिठला कर नगर में दोनों की सवारी निकाली। जब दोनों हाथी के हौदे पर बैठे तो राज ज्योतिषी ने नवागत ज्योतिषी से पूछा, आपका निवास स्थान कहाँ है? नए ज्योतिषी ने अपना गांव बतलाया तो राज ज्योतिषी ने कहा, उस गांव में तो मैं भी रह चुका हूँ। लड़का समझ गया कि यही मेरे पिताजी होंगे। इस शंका को दूर करने के लिए उसने पूछा, आपके यहाँ किसी पुत्र का जन्म हुआ? हाँ, राज ज्योतिषी, हाँ नव ज्योतिषी, और आप उसके जन्म के बाद ही उसका मुख देख बिना चले आए थे? राज ज्योतिषी के मन में यह प्रश्न सुनकर उथल पुथल सी मच गई। मैंने तो आज तक इस रहस्य को किसी पर प्रकट नहीं किया, फिर इसे कैसे मालूम हो गया? उसने शंकित भाव से नवयुवक की ओर देखते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो, पर तुम्हें यह सब कैसे मालूम हुआ? नव युवक बोला, क्योंकि मैं ही आपका बेटा हूँ। राज ज्योतिषी उसकी बात पर संदेह नहीं कर सके। उसे विश्वास हो गया कि यह मेरा पुत्र होना चाहिए, पर राज ज्योतिषी फिर भी चकित था, कारण गधे की सवारी। पिता के आश्चर्य को दूर करने के लिए पुत्र ने कहा, पिताजी मैंने जब ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन कर लिया तो दाई से पूछताछ करके नवीन कुंडली बनाई। आपकी बनाई कुंडली में समय का फर्क था, वो नवीन कुंडली से दूर हो गया। गधे की सवारी के बदले हाथी की सवारी का योग निकला। तब मैं आपकी खोज में निकल पड़ा और आज आप श्री के चरणों में उपस्थित हूँ। बाप ने बेटे को गले से लगा लिया, फिर बेटा बाप को लेकर घर आ गया। सब प्रसन्नता से रहने लगा। इस घटना से यह पता चलता है जरा सा समय भी कितना महत्व रखता है। नगण्य से समय भेद ने फलादेश में कितना बृहद अंतर पैदा कर दिया। अतः कुंडली बनाना सहज कार्य नहीं, जबकि आज की कुंडली कैसे बनती है वो सभी जानते हैं। कालिदास के जीवन की कथा, आदमी का अपने पुत्रों, पत्नी आदि सभी के साथ क्या लेन देन होता है वो समझाने लायक है। ज्योतिष का प्रभाव भी दिख रहा है तो जो होना है वो होकर रहता है, यह भी सामने है। इन सबको देखते हुए सत्पुरुषार्थ की जरूरत है। भाग्य को बदलना है तो मानव सेवा, जीव दया, प्रभु भक्ति, माता पिता का आशीर्वाद लेना सीख जाइए। प्रवचन का पाठ दो अलग से भेज रहे हैं श्री अरिहंत मार्गी जैन महासंघ। सदा जयवंत हो।